बनाया कि स्वतंत्रता के संग्राम में सभी ने स्वतंत्रता के संग्राम में सभी ने एक साथ पति पावन आओ हमें पावन बना ऐसा नारा लगाने से मैं अचानक आ गए।
क्या बोल
स्वतंत्रता के संग्राम में सबने एक ही नारा लगाया ना पति पावन आओ तो आ गए ये कह रहे
अचानक
आ गए उनके लिए कहाँ आ गए जिन्होंने नारे लगाए उनके लिए तो नहीं आ गए
रामा कृष्ण नारा लगाए
आए किन के लिए
वही बाबा मैं पूछ रहा हूँ ये भक्तों ने नारा लगाया या
भक्तों ने नारा लगाया लेकिन बाप बच्चों की बुलाने पर आवेगा और सब एक जैसे बच्चे हैं या एक ही शिकिल्ला बच्चा है तो जिस बच्चे में आते हैं उस बच्चे के लिए विशेष है और बाकी लिए सामान्य बात है। उस बच्चे के द्वारा ही बाप बाप टीचर और सदगुरु का पाठ बजाते मुरली में बोला है ये ब्रह्मा मेरा शिकीलदा बच्चा है तो ब्रह्मा तो चार पांच है उनमें शिकीलदा बच्चा कौन सा है जो बहुत लंबे समय के बाद सिख सिख से मिलता है सन 36-37 में मिलता है वो या 47 में मिलता है वो दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलाना कब शुरू किया
47
कराची से मुरली निकलती चली आई है वो साबित होता है कि ब्रह्मा में दादा लेखराज में बाद में प्रवेश किया और 36-37 में ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए पहले प्रवेश किया और
ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार परमात्मा शिव जो जिस रामवाली में पहले छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ या साक्षात्कार होने के बाद उनको क्लैरिफिकेशन देने के लिए पहले
साक्षात्कार भक्तों को होते हैं या ज्ञानियों को होते हैं भक्त आत्मा को साक्षात्कार होते हैं और वो साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में होते ही आए हैं तुलसीदास को साक्षात्कार हुए सूरदास को साक्षात्कार हुए मीरा को साक्षात्कार हुए उसी सरणी में अंतिम जन्म में कृष्ण की सोल को आकर के भी दादा लेखराज के रूप में साक्षात्कार होते हैं साक्षात्कार होना अलग बात है प्रवेश करना अलग बात है लेकिन उन साक्षात्कारों के रहस्य को खोलने के लिए परमात्मा शिव को फिर किसी मुकर्र रथ में प्रवेश करना पड़ता है तो पहले साक्षात्कार हुए और बाद में उन साक्षात्कारों को क्लैरिफिकेशन देने के लिए मुकर्र रथ में प्रवेश किया
मुरली पॉइंट है ना बाबा साकार बगैर निराकार कुछ नहीं कर सकता साकार बगैर निराकार कुछ नहीं कर सकता पर ब्रह्मा बाबा को साक्षात कराने के लिए उनको किसी तरह प्रवेश होना
साक्षात्कार कराने के लिए प्रवेश होने की दरकार नहीं है अगर ऐसा होता तो आज से 500-600 वर्ष पहले सूरदास को साक्षात्कार हुए तुलसीदास को साक्षात्कार हुए मीरा को साक्षात्कार हुए क्या प्रवेश करके साक्षात्कार कराए साक्षात्कार ड्रामा में नूद है जब जिसकी जैसी नूंद होती है वो भी कारण बताया। नौधा भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। कोई बहुत भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। इसके लिए प्रवेश होने की दरकार नहीं है।
बाबा ने बोला गया है सबसे ज्यादा नीचे और अनीचे के चक्र में ब्रह्म बाबा आता है और राम वाली आत्मा कभी संशय और निश्चय के चक्र में आता ही नहीं, तो फिर उन 84 चक्रों में कैसे आता?
उन 84 के चक्र में साकार रहती होगी या मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज में रह करके व्यास का पाठ बजाती होगी?
वही
है, वो तो आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा है। आखिरी जन्म में आकर के देह अभिमानी बनती है।
बाबा शरीर से होने का कारण है वो निराकारी स्टेज वाला नहीं था, योगी नहीं था।
बाबा क्या
योगी बाबा की शरीर छूटने का कारण
है
वो निराकारी स्टेज वाला नहीं था, वो योगी नहीं था ना,
क्योंकि उनका हार्ट फेल नहीं होता ना बाबा।
ऐसे तो बहुत है जिनके भक्ति के संस्कार अब तक भी नहीं छूटे हैं। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, उसका मूल कारण है लव की अति। होना चाहिए लव और ला का बैलेंस। वो बैलेंस न रहने के कारण ऐसा हुआ।
बाबा एक होली पॉइंट
है,
यज्ञ के आदि में प्रजापिता का ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार का क्लैरिफिकेशन दिया था, वो निराकारी स्टेज वाला था। वो निराकारी स्टेज वाला था तो फिर इनका शरीर कैसे छूट गया?
इसका शरीर छूट गया
प्रजापिता की शरीर था।
जमदे जामदे हो जाता है क्या? मुरली में तो बोला हुआ है शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था तो छोड़ करके चले गए। ज्ञान संपूर्ण होगा तब संपूर्ण निराकारी स्टेज बनेगी। निर्विकारी बनेंगे, निरहंकारी बनेंगे कि अधूरे ज्ञान से बन जाएंगे? संपूर्ण बनने के लिए संपूर्ण ज्ञान भी चाहिए। अधूरा ज्ञान है तो अधूरी प्राप्ति है। ऐसे नहीं कि शुरुआत में निराकारी स्टेज थी, वो तो जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं सबकी ही निराकारी स्टेज होती है। बीज तो बीज होता है, हाँ बीजों में छिलके चढ़ते हैं, कोई में हल्का छिलका चढ़ता है, कोई में मोटा छिलका चढ़ता है। जिनमें मोटे छिलके चढ़ते हैं वो सजाएं ज्यादा खाते हैं, जिनमें हल्का छिलका है वो कम सजाएं खाते हैं, जल्दी संपन्न बन जाते हैं। अंतिम जन्म में गिरने वाली आत्मा के द्वारा शुभ प्रवेश करते हैं और पतितों को पावन बनाते हैं। किस आधार पर पतितों को पावन बनाते हैं? किस आधार पर पतितों को पावन बनाते हैं? संघ के रंग के आधार पर। बाप विदेशी बनकर के आते हैं, अगर विदेशी बनकर ना आवे तो तुम बच्चों को मिलना जुलना भी ना हो सके। तो जिस तन के द्वारा अनेक आत्माओं से मिलना जुलना होता है, संबंध है, संपर्क है, संसर्ग में आना होता है, तो वो बिचौलिया आत्मा उसके ऊपर संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? नहीं लगेगा, लगेगा। इसलिए ज्यादा पतित कही जाती है। जल्दी उतर जाता है, लगता तो है, लेकिन याद की यात्रा में रहने से जल्दी साफ भी हो जाता है। एक शूटिंग की गति में तो सबको आना होता है, ऐसे थोड़े ही कि जब शूटिंग होती है तो हीरो को निकाल के अलग कर दिया जाएगा। हीरो हीरोइन भी तो शूटिंग की गति में पसार करेंगे या नहीं करेंगे? तो महाकाल महाकाली को भी पसार होना पड़ता है।
दुखानी संघ से नहीं तो जिस्मानी संघ से ज्यादा पतित
बनते
संघ से या जिस्मानी संघ से पतित किसे कौन सा संघ से पतित बनते?
रूहानी संघ से पतित बनते हैं।
कौन सा संघ से बने बनते जिस्मानी संघ से बनते हैं ना बाबा?
जिस्मानी संघ से पतित बनते हैं। हाँ जी बोलो आगे।
समाधान मिल गए ना?
अपने आप ही प्रश्न, अपने आप ही समाधान।
समाधान आपको डाउट था, डाउट को आउट कर दिया।
हाँ
बाबा, मन में ये बुरा भी नेगेटिव थॉट्स आता ना, उससे पतित नहीं बनते।
मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, उससे पतित नहीं बनते क्या?
मन में नेगेटिव थॉट्स आते ही तब है जब जिस्मानी स्टेज होती है। जिस्मानी माना रावण की प्रवेशता, रूहानी माने राम की प्रवेशता। सारा नेगेटिव लाता है रावण माया, और पॉजिटिव लाता है राम बाप।
बाबा जी उनको पूर्व कहते हैं तो फिर वो राजा पिता के साथ ही एडवांस और बेसिक में आए हैं। वो सन 36 होता है, 76 है क्या?
ठीक है, एडवांस में पहले है तो बेसिक में भी पहले हो।
ऐसा कहा गया ना अष्टदेव में आने वाले वो सब नए हैं, कोई भी पुराने नहीं।
वो एडवांस में नए हैं, बेसिक में तो पुराने थे, पुराने हैं। ऐसे पुराने हैं जिन्होंने इन्हें दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया है।
दीदी दादियां
बेहद में एडवांस में होंगी,
वही तो मानता होगा
है,
वही तो होगा।
क्यों नहीं होंगे? बेहद में होंगे, वो बीज रूप स्टेज वाले होंगे, देहाभिमान की स्टेज वाले तो होंगे नहीं।
वो बेसिक से निकल के एडवांस में आए आने वाले होंगे।
बेसिक से निकले हैं तो आगे बढ़ेंगे पीछे हटेंगे?
आगे
है।
तुमने बेसिक से आने के कारण वो स्वभाव संस्कार रहती है क्या?
बेसिक में ज्ञान खुलता है या गुप्त रहता है? ज्ञान गुप्त रहता है, मर्ज रहता है। ब्रह्मा की सोल को भी ज्ञान का तंत्र नहीं बैठता। उनको भी बाप की पहचान नहीं होती। तो जो भी फॉलोअर्स हैं उनको बाप की पहचान नहीं हो पाती।
बाबा बेटी की आदि में प्रजापिता को प्रजापिता ने सुनना और सुनाने का पाठ किया।
प्रजापिता ने सुनने सुनाने का पाठ किया।
प्रजापिता
समझ नहीं आ
सकता जो ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार का क्लैरिफिकेशन देने के लिए
माता के द्वारा भक्ति का फाउंडेशन डाला गया और पिता के द्वारा समझने समझाने के ज्ञान का फाउंडेशन डाला गया।
माना जिस माता ने जो ब्रह्मा बाबा की बातें प्रजापिता को सुनाए गए ना, वो माता वैष्णवी देवी छोटी माँ है, क्योंकि 30 नवंबर 1965 में दोबारा प्रजापिता ने ज्ञान में आने के बाद उनका बेसिक छोटी माँ से हुई है, वो छोटी माँ ही है ना, देवी के आदि में सुनाए गए।
निमित्त कहेंगे कि बेसिक ज्ञान देने के लिए कोई निमित्त बना, लेकिन ज्ञान देने के लिए निमित्त वो बनता है जो निश्चय बुद्धि कराए, समाधान करे प्रश्नों का। अगर प्रश्नों का समाधान ही न करे तो फिर कैसे कहा जाएगा गुरु?
आदि तो अंत कहते हैं, जो आदि से हुआ वही अंत हुआ। ज्ञान में आने के बाद
तो आज वो अंत थोड़े ही है, 69 या 68 कोई अंत है क्या? अंत 76 से शुरू होगा या उससे पहले शुरू होगा? अंत कब कहेंगे? 76 से अंत कहेंगे।
दादा लेकर वो पार्वती है या जगदम्बा, वो आत्मा कौन?
जिनको परदादी कहा जाता है,
परदादी तो अभी आई नहीं।
निर्मल शांता दादी बेसिक में परदादी कही जाती है। उनकी जिन्होंने पालना की थी वो बाबा के बहन और बहनों ही थे। उनके संस्कार उनमें पालना में समय हुए थे। गायन है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो ब्रह्मा का पाठ वास्तव में किसने बजाया? दादा लेखराज ब्रह्मा ने बजाया। तो ब्रह्मा किससे निकला? जरूर कोई विष्णु था यज्ञ के आदि में। विष्णु माना अंतिम जन्म में भी जिनके स्वभाव संस्कार आपस में मिले हुए थे, एक दूसरे का विरोध करने वाले नहीं थे। जैसे ब्रह्मा और उनकी युगल यशोदा समान पुरुषार्थी थे या असमान पुरुषार्थी थे? असमान पुरुषार्थी थे, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाना पड़ा ओमरादि को। लेकिन आग जहां से हुई, जिसके द्वारा समझने और समझाने का फाउंडेशन पड़ा, वो युगल ज्यादा समझदार थे। सुनना और सुनाना अलग बात, समझना समझाना और धारण करना अलग बात हो जाती।
बाबा अष्टदेवों में सभी बीज है ना, उसमें चार नष्टदेव है और धर्म दस है और दो कौन सी?
जैसे अभी नवग्रहों में से नौ ग्रह के बाद एक दसवां प्रत्यक्ष हो गया ना, ऐसे ही अभी दो और प्रत्यक्ष होंगे। नौ धर्म और नौ के फाउंडेशन डालने वाले तीन मूर्तियां, तीन मूर्तियां हैं अलग और अष्टदेव नवदेव अलग हैं, जिनका कनेक्शन अष्ट रतन और नवरतन से बनता है, टोटल मिला के बनते हैं बारह। पहले त्रिदेव प्रत्यक्ष हुए या पहले अष्टदेव प्रत्यक्ष हुए? पहले त्रिदेव प्रत्यक्ष हुए। एडवांस की याद में भी जो अष्टदेव हैं वो पहले होते हैं और
बाबा यशोदा का देहांत
है,
यशोदा देहांत में अर्थ क्या है?
यश दा, यश माना महिमा, यश दा माने देने वाली, जो यश देने वाली है वो यशोदा, जो अपयश देने वाली है वो पूतन।
बाबा मंजरी क्या?
आम के बौर को कहा जाता है मंजरी। आम का जो पहला पहला फूल जिसे हम कहें आम की कली, उसे कहते हैं मंजरी।
मंजीरा, मंजीरा,
मंजीरा क्या?
मंजरी मंजीरा भी कहा गया।
नाम बिगड़ गया।
दिनेश और दिलीप का देहांत, दिनेश
और
दिलीप दोनों का देहांत।
ऐसे कहां तक पूछते रहेंगे एक एक नामों के लिए? अपार भंडार है, डिक्शनरी ठीक करो, उसके भेद के अर्थ लगा लो।
बाबा अष्टदेव में तो दूसरा मन का है ना, उनका स्वभाव संस्कार जो विजयमाला के हेड है उनसे मिलती है क्या?
विजयमाला की हेड से ही स्वभाव संस्कार मिलेगा, या रुद्रमाला की जो फीमेल हेड है उससे भी मिलता जुलता होगा? विजयमाला की हेड में जो स्वभाव संस्कार होंगे उनका कोई बीज एडवांस में होगा या नहीं होगा?
होगा।
ऐसे
बाबा मगर उनको लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर रहे ना।
कौन?
नारी से लक्ष्मी बनना था मगर पुरुष बन रहे ना, रुद्रमाला के हमजंस चेंज होने वाली है ना।
तो नहीं तो रुद्रमाला कैसे कही जाएगी? राजा नहीं बनेंगे तो
नारी से लक्ष्मी बनना ना बाबा।
अगर राज नारी से लक्ष्मी, नारी चोला अंत तक रहेगा है?
नहीं रहेगा।
स्वभाव संस्कार के आधार पर हार्मोन्स चेंज होंगे और नारी से बदल करके नर हो जाएगा।
मैंने कुर्ली में कहा है नारी से नारायण बनना गलत बात है और नारी से लक्ष्मी बनना ये राइट है।
ठीक बात है, बाबा ने जो लक्ष्य दिया है वही सच्ची बात है। नारी चोला है तो नारी चोले का धर्म निर्वहन करना पड़े, खास करके कलयुग की दुनिया में। अगर नारी चोला होते हुए भी नारी चोले का धर्म निर्वहन नहीं किया तो ऊपर नीचे हो जाएगा।
बाबा हम्पी देश के राजा ने सुनीति को दूर क्यों किया और सुरीचि को नजदीक लगा? कपिल देश के राजा ने सुनीति को दूर किया क्यों और सुरीचि को नजदीक रखा? सुनीति तो पूरा श्रीमत को फॉलो करती थी और सुरीचि श्रीमत को फॉलो नहीं करती।
जो लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होता है वो गम खाता है, या जो लड़ाई झगड़ा करता है वो गम खाता है? इधर गम खाओ, धीरंधर मनुआ धीरंधर। जो लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है स्वभाव संस्कार का, वो धीरे नहीं धारण करता। और जो लड़ाई झगड़े का स्वभाव संस्कार वाला नहीं होता है वो धीरे धारण करता है। तो राजा ने नहीं रखा दूर, वो स्वतः ही दूर हो गई, ताकि झगड़े टंटे से अलग रहे, बच्चे में अच्छे स्वभाव संस्कार आ जाए। जो माँ बाप आपस में लड़ते झगड़ते हैं उनके बच्चों में स्वभाव संस्कार दूषित पड़ जाते हैं। तो माँ का मुख्य काम है बच्चे में अच्छे स्वभाव संस्कार का पोषण करना।
मैं उसको पूरा श्रीमत को पालन किया फिर भी थोड़ा दुखी है।
सुनीति ने पूरा पालन किया?
हाँ वही।
हाँ जी,
दुखी है या दुखी है?
क्या
सुखी है या दुखी है?
सुखी है या दुखी है?
जो श्रीमत को फॉलो करता है वो दुनिया की नजरों में भले दुखी देखने में आए लेकिन अंदर से सुखी होता है। जैसे राम के लिए दुनिया कहती है कि राम ने जंगल में वास किया, इतना दुख सहन किया, क्या राम की आत्मा को दुख अनुभव होता है? उनको तो दुख अनुभव नहीं होता।
बाबा ये हारमोन चेंज हो गए अष्टलक्ष्मण का प्रत्यक्ष होने के बाद इधर 2018 में
सबके हारमोन चेंज हो जाएंगे क्या?
अष्टलक्ष्मण का कब होंगे?
अष्टदेवों
में प्रत्यक्ष होने के बाद विजय माला में पिरोने के बाद कब होगा?
अब होगा
नहीं, हार्मोन चेंज हो गए जाएंगे ना बाबा। फीमेल हार्मोन पूरा नहीं बन जाएंगे तो कौन सा समय?
हार्मोन तो तभी चेंज होते हैं जब स्वभाव संस्कार चेंज हो जाते हैं पूरे।
टाइम है ना, प्रत्येक सोने के बाद
विजय पहले से कुछ नहीं बताया जाता
है। विजय माला में फिर होने के बाद
विजय माला में एड होने के बाद जो स्वभाव संस्कार है वो विकारों पर विजय प्राप्त करने के बनेंगे।
राजा मंडी को दक्षिण भारत में दक्षिण काशी मानते हैं क्योंकि 1 करोड़ लिंग है और गोदावरी को दक्षिण गंगा समझते हैं। बेहद में कौन?
कर्नाटक वाले कहते हैं कावेरी दक्षिण गंगा है, आंध्रा वाले कहते हैं गोदावरी दक्षिण गंगा है, बाप कहते हैं लिंग। ज्यादा से ज्यादा लिंग की स्टेज को पकड़ने वाले नंबर वन 1-2 लाख शालिग्राम है।
तो 1 करोड़ दिखाए
हैं,
1 करोड़
उन्होंने 1 करोड़ बता दिए। माना सतयुग आज में 4 जन्मों में जितनी जनसंख्या होगी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले वो भी लिंग हो गए। ये टुंडे टुंडे मते भिन्ना वाली बातों में क्यों जाना है? बाबा क्या कहते हैं और बाबा शास्त्र में से कौन कौन सा प्रमाण देते हैं, कौन सी बातें उठाते हैं, उनमें मनन चिंतन मंथन करना उसमें फायदा है। बाकी तो शास्त्रों में सब भूसा भरा पड़ा है।
आदि में गीता माता शरीर छोड़ने के कारण
ब्रह्मा बाबा की पुरुष चोला होने के कारण ब्रह्मा सरस्वती को जगदम्बा का टाइटल दिया गया, फिर भी कहा ये ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं करेंगे और शंकर पार्वती को भी युगल नहीं, प्रवृत्ति मार्ग नहीं करेंगे। और अभी नया सीडी में कहा है योगी राज है तो योगिनी बहन भी है, ये प्रवृत्ति मार्ग
है। शंकर पार्वती है क्या?
वही तो जानना है
बाबा, कोई शंकर पार्वती थोड़ी है, योगी और योगी राज, योगी योगिनी को वास्तव में रुद्रमाला के मड़के हैं या पति पत्नी है, तो आपस में क्या हुए? भाई भाई है,
प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग
है, प्रवृत्ति मार्ग। जैसे कोई पार्टदारी होते हैं ना, पुरुष चोला है फिर भी स्त्री का पार्ट बजाता है, कोई स्त्री चोला है लेकिन फिर भी पुरुष का पार्ट बजाता है, तो ऐसे ही वो बीज रूप आत्माएं हैं, उनको अव्यक्तवाणी में बोल दिया है माता पिता, इसलिए माता पिता का पार्ट बजाते हैं। इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, किसी वंशियों का सूर्य वंशियों के माता पिता का पार्ट बजाते हैं, सारी शक्ति के माता पिता नहीं है। सही
गीता का
एक मिनट है, सच्चे खाना का मतलब वही खाना खाएं जो श्रीमद में बोला है, सच्चे पहनना माने उतर वही कपड़े पहने जो श्रीमद में बोले गए, सीधा सीधा उसका हिसाब है, तो पूछने की क्या बात है, वही सच्चे खंड स्थापन होगा। खान पान रहन सहन कैसा होना चाहिए, जैसा मुरली में बताया हुआ है, मन मत का न हो, मनुष्य मत का न हो, वो भी बता दिया मुरली में, आज की झूठ की दुनिया है, सब धंधे झूठे हो गए हैं, कोई आदमी कोई धंधा कर रहा है धंधे में थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर देगा तो और दुकानें हैं वो फायदे में ही रहेंगी और वो दुकान घाटे में चली जाएगी। जैसे आज बहुत ही कारखाने बंद होते जा रहे हैं और झूठों का बोलबाला होता जा रहा, इसलिए युक्ति बता दिए। ऐसे लेना है जैसे आटे में नमक मिसल, अपना भी नुकसान न हो और दूसरे का भी नुकसान न हो।
बाबा वेदांति बहन आएंगे तो स्वर्ग में पहुंचेंगी ना?
नरक में पहुंचेंगे?
तो वहां पढ़ाई पढ़ाने की क्या जरूरत है पूछ रहे माता जी,
कहाँ पढ़ाई पढ़ाने की, ये कैसे पता है कि आने से ही पहले ही वो ना स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, आते आते ही स्वर्ग में पहुंच जाएंगे क्या? उनको पढ़ाई पढ़ने में धारण करने में टाइम कम लगेगा या ज्यादा टाइम लगेगा?
कम लगेगा,
कम टाइम लगेगा, रुद्रमाला के और मणकों के मुकाबले उनमें धारणा शक्ति ज्यादा होने की वजह से, प्योरिटी की पावर ज्यादा होने की वजह से वो लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे।
बाबा मुरली में कहा गया ना बाबा कि गीता शास्त्र सब शास्त्रों का माय बाप है,
हाँ जी,
तो गीता सबसे, गीता शास्त्र सबसे पहले द्वापर में लिखा हुआ होगा
क्या?
गीता शास्त्र सब शास्त्रों से पहले लिखा होगा द्वापर में और उसके बाद दूसरे शास्त्र लिखे होंगे, और वो गीता शास्त्र कौन लिखे होंगे द्वापर में?
व्यास का नाम दिया है,
पर कोई ज्ञानी
आत्मा ही लिख सकता है
शास्त्र में।
बोला अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में बैठ लिख दी।
और भागवत कब लिखी होगी आपने? और शूटिंग पीरियड से
भागवत पुराण है, पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, ऐसे ऐसे एक दूसरे की व्याख्या करते गए, फिर उपनिषद, फिर पुराण। उपनिषदों की व्याख्या पुराणों में हुई, तो भागवत भी महापुराण है।
द्वापर में कब लिखी होगी?
लास्ट में।
और शूटिंग पीरियड से कुछ समझ है?
ऐसे मोस्टली जो शास्त्र है, भागवत, महाभारत और रामायण, ये तीनों द्वापर में लिखे जा चुके हैं। द्वापर के आज में बनती है गुफाएं, भित्ति चित्र बनते हैं, पहाड़ों की कंदराएं काटी जाती हैं और उनमें चित्रकारी की जाती है। वो चित्रकार भाव भंगिमा में विभोर होकर के उन चित्रों की चित्रकारी करते हैं। बाद में इन चित्रों को देख देख करके शास्त्र तैयार होते हैं और फिर शास्त्रों की द्वापर के अंत तक व्याख्या चलती रहती है।
नौक के ऊपर बालंस का पार्ट
है,
त्रिशूल के नौक के ऊपर वो बालंस का पार्ट वो चल रहा है ना योगी जी?
हाँ जी।
कौन सी अष्टमी?
जैसे कहते हैं ना, ज्ञान में एक्यूरेट चलना तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर है, ऐसे ही त्रिशूल दिखाया है। त्रिशूल में जो बीच का कांटा है वो विष्णु के ज्ञान का सूचक है। विष्णु तो वैसे ही बैलेंस में चलने वाला है, न ज्यादा लाभ न ज्यादा लव, लव की भी कमी नहीं और ला की भी कमी नहीं, दोनों का बैलेंस। ऐसा जीवन व्यतीत करना माना नौक पर चलना।
समझ में काम है, एडवांस में पाठ बजाती है, एडवांस में पाठ बजाती
है।
योगिनी के बारे में बोला,
हाँ,
योगिनी काशी नगरी त्रिशूल की नौकों पर बैलेंस पार्ट, बैलेंस की पार्ट बजाती है एडवांस में।
ठीक है,
एडवांस में क्या?
एडवांस माने सबसे पहले, आगे आगे।
बाबा हिंदुओं का विरोधी बनाना ये शूटिंग में कैसा होगा?
हिंदुओं का विरोधी बनाना,
हिंदुओं का विरोधी बना ये शूटिंग में कैसा होगा?
हिंदुओं ने अंधश्रद्धा धारण की और कराई या श्रद्धा विश्वास धारण कराया?
हिंदुओं ने
जो भी परंपराएं चलाई द्वापर युग में उनमें अंधश्रद्धा अंधविश्वास का समावेश हुआ या श्रद्धा विश्वास का समावेश हुआ?
अंधश्रद्धा।
तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास को काटने वाला ईश्वरीय ज्ञान नहीं होता क्या?
मंदिर को तोड़
मूर्तियों की पूजा ये अंधश्रद्धा अंधविश्वास नहीं है क्या? और
बाबा मेरे से योग लगाओ, मामे कब याद करो, याद और योग दोनों में अंतर क्या?
जो हठयोगी है उन्होंने योग नाम दे दिया है। बाबा कहते हैं याद करो, योग अक्षर भूल जाओ, ये हठयोगियों का अक्षर है।
मुरली में जो बोले ना मेरे से योग लगाओ,
वो तो शास्त्रों के आधार पर एक भाषा बोल दी। वास्तव में है तो याद
बाबा 89 में कृष्ण की सोहन गर्भ में प्रवेश किया, वो भागवत की है क्या? वो भागवत की शूटिंग है
89 में।
हाँ 89
अली जब से भाग भाग करके इकट्ठी होने लगे तो भागवत की शुरुआत है। शुरुआत कहीं से तो होगी, और शुरुआत थोड़ो से होगी या ज्यादा से होगी? स्वर्ग की भी शुरुआत होगी तो थोड़ो से होगी या एकदम नौला आके इकट्ठे हो जाएंगे? ऐसे ही है।
उस समय जो नौ कन्याएं निकल के आई है उनमें से कोई अष्टदेव में आएंगे क्या?
अष्टदेवों के लिए तो बता दिया अब दो चार साल पहले कि 10 साल पहले 10 साल के अंदर अंदर निकले।
93 से जो भी आए हैं
जो भी आए नहीं कोई बाद में भी आ सकते हैं, हो सकता है 98-99 में भी प्रत्यक्ष हुए होंगे। और
बाबा अष्टदेव में अभी जो दूसरा मन का निकले है ना उन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पुरुषार्थ करने वाली थी या मिनी मधुबन में रहते हुए पुरुषार्थ करने वाली थी?
जो गृहस्थ में रह करके पुरुषार्थ करते हैं और जो बाबा ने संगठन बनाया है उस संगठन के बीच में रह करके पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ में दौड़ लगाने की ज्यादा मार्जिन कहाँ है? दूसरी बात जो सरेंडर होते हैं उनकी जिम्मेवारी किसके ऊपर हो जाती है? बाप के ऊपर। तो जिनकी जिम्मेवारी बाप ने उठा ली उनका 16108 की माला में आना निश्चित हो जाता है। ये बात दूसरी है कि पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद पावेंगे, सेवा करेंगे तो उच्च पद पावेंगे, सेवा नहीं करेंगे पड़े पड़े खावेंगे तो आखिरी जन्म में जाकर के कहीं प्रिंस या प्रिंसेस बन जावेंगे, बाकी दास दासी बनते रहेंगे।
बाबा पंचम की बीसीडी में कहा गया है अष्टदेव जो होते हैं वो पूरा बाप को फॉलो करते हैं, उसमें कहा गया है बाप का क्या कहना है? किस गांव में आते हैं? बहुत गंदे, जहां खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलता उस गंदे गांव में आता हूं, प्यार से बच्चों को पढ़ाता हूं, जहां 36 प्रकार के भोग बनते हैं मैं वहां नहीं आता हूं। अष्टदेव भी वैसा ही, जहां जहां 36 प्रकार के भोग मिल रहे हैं वहां नहीं निकलेंगे वहां से। फिर बाबा ने पूछा 36 प्रकार के भोग कहाँ बनते हैं? किसी ने कहा माउंट आबू में। फिर बाबा ने कहा और मिनी मधुबनों में नहीं बनता है क्या? तो फिर ये साफ का ही करता है मिनी मधुबन से कोई अष्टदेव में आना नहीं है, ये मुरली पॉइंट का साफ का ही।
मिनी मधुबन और मधुबन जो भी पीवी केस बने हैं वो मधुबन से ही आए हैं या कहीं दूसरी जगह से आए हैं? जो भी टीवी के एडवांस में आने वाले बने हैं वो कहां से आए? बीके से आए या कहां से आए? और बीके कहां बने? बीके बनाने की फैक्ट्री कहां है? मधुबन। तो जैसे मधुबन वैसे मिनी मधुबन, वो बड़ा रूप और वो छोटा रूप, इसलिए आना तो मधुबन से ही है क्योंकि मधुबन है सारी दुनिया का एक छोटा आरसी। उसमें सात तरह के बैठे हुए हैं। फिर जैसे बाप आते हैं संक्षतिस में तो सिंध हैदराबाद में 9 लाख आत्माएं इकट्ठी हो जाती है सृष्टि के आदि वाली, और उनमें से फिर चुनाव होता है। ऐसे ही बेसिक में आते हैं मधुबन से ज्ञान लेते हैं, बीके बनते हैं, फिर उनमें से चुनाव होता है, एडवांस आते हैं, एडवांस में पीबीके बन जाते हैं, फिर पीबीके में मिनी मधुबन बन जाते हैं, फिर उन मिनी मधुबनों में से ऐसे ही सिलेक्ट होते हैं जैसे सिंध हैदराबाद में हर धर्म खंड से सिलेक्ट हुए थे। तो ये नहीं कहेंगे कि अष्टदेव में आने वाले बाहर की दुनिया से आते हैं, बाहर की दुनिया में तो मूल रूप से सभी आते हैं, कोई कोई होते होंगे जो जन्म से ही बीके या पीबीके होंगे, वो भी बाहर की दुनिया से आकर के बीके के यहां जन्म लेते हैं या बीके से ही आकर के बीके में जन्म लेते हैं। माने पुरानी दुनिया से ही सब नई दुनिया में आते हैं। लेकिन इनका प्रश्न ये है कि घर समय से रहने वालों में से अष्टदेव बनते हैं या मधुबन और मिनी मधुबन में से आने वाले अष्टदेव बनते हैं, कौन बनते हैं?
दोनों बाप जैसे निकल रहा है गंदी गाँव में तो फिर उसमें ऐसा इशारा दिया गया ना सब बाबा सीडी में 120 वीसीडी में कहा गया मिनी मधुबन में भी 36 प्रकार का कुक बनता है। तो फिर जैसा बाप निकला है
36 प्रकार के भोग सभी मिनी मधुबन में बनते हैं क्या?
कोई कोई ऐसा कहा गया इसमें कोई कोई मिनी मधुबन में भी बनता है कि नहीं जरूर बनता होगा ऐसा भी कहा।
जब तक तो बाप का कंट्रोल है तब तक बाप के अनुसार बनता है, जब बाप के कंट्रोल से बाहर रहते हैं तो माया अपना असर जमाती है।
बाबा
है
बाहर में रह के भी बाबा का सिमत पे चलने वाले भी बन सकते हैं ना?
क्यों नहीं बन सकते
जी?
अगर पूरी श्रीमत पर चले, श्रीमत की बरखिलाफी जीवन में न पकड़ी जाए तो क्यों नहीं बन सकते?
बाबा पुराने कैसे सूची बन गए, कहा गया कि बाप किसी को टुकराता नहीं है, तौल के देखता है, क्योंकि सभी पूछेंगे इनको माला में लिया गया हमें क्यों नहीं लिया गया। और ठीक उसी तरह अष्टदेव में जो दूसरा मन का छू है निकली है ना, उन्होंने किन किन परीक्षाओं की सामना की और किन परीक्षाओं में पास हुई है, बाप ने किस तरह तोला हुआ
जान सकते
हैं? अष्टदेव में दूसरे मन का तोला गया है,
लौकिक दुनिया से भी मुकाबला किया होगा, पर लौकिक दुनिया से ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया में आने पर वहां भी मुकाबला किया होगा, माने बेसिक में, फिर बेसिक से एडवांस में आने के बाद वहां भी सहन किया होगा, मुकाबला किया होगा, हर जगह से पहली मुख्य स्थिति होनी चाहिए नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। आखिरी परीक्षा कौन सी है?
सुदेव में वो तो फिक्स हो गया, बाकी जो अच्छे आत्माएं हैं तो अभी इस समय तुषार समय में 26 घंटे में कितना समय आर्थिक स्थिति में रहती है बाबा?
ये जो चार छह घंटे सिर्फ जिनको सोने का टाइम मिलता हो और बाकी सारा टाइम ईश्वरीय सेवा में जाता हो, तो उनकी आत्मिक स्थिति बनेगी या देह अभिमान की स्थिति बनेगी? है जरूर आत्मिक स्थिति बनेगी। जो मेरी सेवा करते हैं, ऐसी सेवादारी करने सेवादारी बनने वाले बच्चों को मैं याद करता हूँ। बाप किसको याद करते हैं? सेवादारी बच्चों को याद करते हैं। तो जिनको बाप याद करेगा वो देह अभिमानी होंगे या आत्माभिमानी होंगे? आत्माभिमानी होंगे।
बाबा
है
रूहानी सेवा करने वाले, नहीं तो जिस्मानी सेवा करने वाले।
रूहानी सेवादारी याद तो कोई बाप याद कर रहा है, जिस्मानी सेवा कर
बाप रूहानी है कि जिस्मानी है?
अरे मनसा सेवा करने वाले बन सकते।
अरे बाप रूहानी है या जिस्मानी है, खुद क्या है?
बाप तो रूहानी है।
बाप रूहानी है तो किसको याद करेगा? अपने बच्चों को याद करेगा या रावण के बच्चों को याद करेगा?
जो अभ्यक्त में रहते हैं उनको याद करेगा।
हाँ तो अभ्यक्त में रहना माने रूहानी स्टेज में रहना।
बाबा जो विनी मदद में सरेंडर है, उन्होंने तो खेत में सेवा कर रहे हैं, चार छह घंटे नींद छोड़ करके बाकी समय सेवा कर रहे हैं ना,
है जी,
तो सत्रह समय आत्मिक स्थिति में नहीं रहते
हैं
ना? कितना समय जयदेवन है अभी इस समय पूछा समय में कितना समय आत्मिक स्थिति में रहते हैं?
खेत वालों की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे
हैं? सदेव।
हाँ सदेव की बात कर रहे हैं।
अभी प्रशांत समय में कितना समय आत्मिक स्थिति में रहते हैं? 24 घंटे में
जब ईश्वरीय सेवा में रहेंगे, आसुरी सेवा या अपने रथ की सेवा में नहीं रहेंगे, तो उनको याद कैसी होगी? रूहानी होगी या जिस्मानी होगी?
रूहानी तो होगी बाबा।
रूहानी होगी।
8 घंटे पढ़िए आत्मिक स्थिति नहीं तो लगे तो अपने पूरे 84 जन्मों का चक्कर जान सकते हैं।
वो एक बाप की बात है। राम वाली आत्मा संक्षेप्तर से अपने स्वरूप को पहचान जाए तो क्या जरूरी है कि वो 84 जन्म को भी पहचान जाती है? नहीं ना, ऐसे ही है। अभी रील घूमती जाती है, रील खुल रही है, हर आत्मा की रील खुलनी है और अंत तक खुलती रहेगी जब तक बड़ा ड्रामा शुरू न हो जाए।
बाबा देखिए क्या आदि में स्वर्ग का छोटा सा सैंपल तैयार हुआ, तो फिर अभी ठीक उसी तरह अभी हेड ऑफिस के नाम से जाने जाते हैं जिसको NS कहते हैं, वो है क्या अभी?
वो तो सिर्फ जड़ मॉडल था और वो जड़ मॉडल बनाया गया था झूठी गीता के द्वारा, जिसका यादगार अजमेर में दिखाया जाता है, स्वर्ग का मॉडल भक्ति मार्ग में। उसका फाउंडेशन ज्ञान मार्ग में पड़ा कराची में, डालने वाले थे कौन? जहां मुसलमानों का उर्स होता है, मेला लगता है, वो जड़ मॉडल बनाने वाले। और सच्ची गीता है चैतन्य दुनिया बनाने वाली। प्रश्न की गीता से नरक बनता है। आज की नरक की दुनिया में ऊंचे ऊंचे महल माड़ियां अटारियां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो बनती जा रही है, लोगों की नजरों में देखने में आता है कि ये स्वर्ग बन गया, लेकिन वो अंपकार का पंप एंड शो है, स्वर्ग नहीं है। और सच्ची गीता से तो असली स्वर्ग की स्थापना होती है।
बाबा अभी जो एनएस तो बनी है ना, उसका
जो जो फाउंडेशन होता है उसको स्वर्ग नहीं कहा जाता, फाउंडेशन जमीन के अंदर डाला जाता है। फाउंडेशन के ऊपर फिर बिल्डिंग खड़ी की जाती है। जो फाउंडेशन डाला जा रहा है उसके लिए बोला है तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात देती है, स्वर्ग नहीं दे दिया है।
एक वार्तालाप में कहा गया है जो तीसरा मूर्ति आने के बाद जो संगठन तैयार होगा उसको कहेंगे हेनस।
हाँ जी,
पर अभी जो एनएस लगा है ना उसको मिनिमम पर भी लगा सकते हैं ना, वहाँ भी
मधुबन माना है जहाँ मधुसूदन है सो मधुबन
माना, वहाँ पे मधुसूदन आना जाना होता
है। यहाँ भी मधुसूदन जब आप्त देवों में पहला देव है
कोई तो ना रहे
तो मधुबन नहीं है, मधुबन वासी नहीं होगा,
होगा मगर नाम तो ऐसा दिया गया
है,
नाम तो एनएस दिया गया
है। उसे क्या होता है
मिनिमम
एनएस का मतलब ये नया संगठन
बस तीसरी मूर्ति आने के बाद बनती है वो करते थे एनएस का
तो तीसरी मूर्ति का भी कोई फाउंडर है रुद्रमाला में। अरे रुद्रमाला में सारी दुनिया के बीज है, तो विजयमाला के हेड का बीज नहीं होगा।
है
खत्म
हाँ। बाबा एक हरिद्वार में कहा है विजयमाला का आह्वान करो, माना बेसिक वाली विजयमाला के हेड को या जो अष्टदेव में जो बीज बनी हुई है उनके आह्वान करने के लिए बात बोला गया है।
जो भी विजय दिलाए चाहे फाउंडेशन में विजय दिलाए और चाहे पूरी बड़ी बिल्डिंग बन जाए तब विजय दिलाए, विश्व का मालिक बनाए।
क्योंकि बाबा बोलता है ना, बाबा बेहद में बोलता है तो हद में बोलता है तो बेहद में लागू होता है, तो फिर हमको बेहद में लेना चाहिए।
बाबा ये माता पूछ रहे हैं कि आदि में चार आत्माएं कौन कौन है, गीता माता सेवक्राम और चार आत्माएं कौन है
किस आदि में, एडवांस की आदि में कि बेसिक की आदि,
बेसिक की आदि में एग्नि की आदि एग्नि की आदि और एक माता थी ना वो कौन है।
दो माताएं थी यज्ञ के आदि में और एक बाप और ब्रह्मा, ओम राजे सरस्वती बाद में आई, सरस्वती नदी के लिए कहते हैं बीच में आती है बीच में चली जाती है इसलिए उनकी गिनती नहीं है उसमें।
माँ बाप के जो बच्चे होते हैं उनको माँ बाप की जो संतान होते हैं उनको प्रजा कहेंगे या बच्चे कहेंगे,
जो दीक्षा देने वाला है दीक्षा माने ट्रेनिंग उसका नाम है दक्ष। वो खुद ही बाप है, उसका कोई बाप है ही नहीं, वो खुद ही साकार में टीचर है, उसका साकार में उसे पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई टीचर है ही नहीं।
बाबा बच्चे कहाँ पे है उनको प्रकट है
है? हाँ।
सेवादारी बच्चे
बच्चों का मतलब क्या है सेवादारी?
सेवादारी बच्चों का मतलब है जो रूहानी सेवा करने वाले हो, स्वार्थ की सेवा नहीं, अपने रथ की सेवा करने वाले नहीं, रथ से संबंध रखने वाले, देह से संबंध रखने वाले, देहधारियों की सेवा करने वाले नहीं, रूह की सेवा करने वाले। रूहानी बाप से कनेक्शन जिनका है उन रूहानी बच्चों की सेवा करने वाले।
माँ बाप की जो संतान होती है उनको बच्चे कहेंगे या प्रजा कहेंगे?
संतान को भी प्रजा कहा जाता है, पालोर को भी प्रजा कहा जाता है।
तो बच्चे किनको कहा?
जो फॉलो करते हैं बाप को वो ही बाप के बच्चे हैं, जो बाप को फॉलो ही नहीं करते वो बच्चे कहेंगे।
बाबा अभी नई दुनिया में जो प्रजा है वो क्या कर रही है?
प्रजा शांति से सत्यु की जैसे रहती है ऐसे शांति से रहते हैं, खुद शांत रहते हैं दूसरों को भी शांत रखते हैं, ना उद्योग पैदा करते हैं दूसरों को और ना खुद उद्देशित होते हैं। जैसे नई दुनिया होगी तो वहां प्रजा कैसी होगी? शांत रहने वाली होगी, दम चक्कर मचाने वाली नहीं होगी, ऐसे ही रहते होंगे।
मगर बाबा वो प्रजा किनके हैं? वो जो प्रजा है
बाप की प्रजा भी होती है, बाप के वारसदार भी होते हैं, बाप के भक्त भी होते हैं।
मगर बाप के बच्चे होते हैं?
बाप के बच्चे माने बाप के वारसदार बनने वाले।
मैं वो वारिस आठ ही है,
108 बाप के वारसदार नहीं है।